बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
प्रोग्राम का आगाज वहीं से करते हैं जहाँ मैं शुरू हुआ था। आपको आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आपसे मुखातिब हूँ।
अच्छा भाई, ये एक सवाल है कि एक करप्शन के हवाले से और एक जो है वो नई नस्ल को के जो चैलेंज है उससे उसके हवाले से है। ये मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अभी आपके सामने गुफ्तगू की है ना, वो सिर्फ ये गुफ्तगू जो है वो सिर्फ मफरूजात की निशानदेही की हद तक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि इनका तज्जिया वगैरह अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये हम बैकग्राउंड इसलिए बना रहे हैं कि हमें पता चले कि हम जब भी तालीम, जदीद तालीम, मुस्तकबिल उम्मत का मुस्तकबिल या पाकिस्तान का मुस्तकबिल वगैरह इस किस्म की गुफ्तगू में जाते हैं तो ये मफरूजात जो होते हैं हमारे जहन में, जो शऊरी और लाशऊरी तौर पर हमारे सोचने और हमारे तज्जिए के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सही है, हम इनका अहाता करेंगे, तफसील से इनका अहाता करेंगे, लेकिन अभी जो है हम इनके हल या ये सही थे या गलत हैं इस पे हम नहीं जा रहे। बेसिकली हमने ये बताने की कोशिश की है कि जब भी लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के हवाले से या मुस्तकबिल के हवाले से या नौजवान नस्ल के चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उसमें तालीम का भी हवाला हो तो इस किस्म के मफरूजात हमारे जहन में काम कर रहे होते हैं। सही है, अभी इनको हम काउंटर करेंगे, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अब हम एक दूसरी बात कर रहे हैं, मगरिब आपको किस तरह देखता है। सही है, अभी हमने ये देखा कि ये जो हमारे ये जो जितने ही पॉइंट्स हमने देखे ये आमतौर पर हमारे ही लोगों के अपने ही लोगों के ख्याल हैं जो मुख्तलिफ बेंट ऑफ माइंड और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल सोर्सेज से आते रहे हैं। उनका नाम हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे लोग हैं, जो भी हमारे बारे में राय रखते हैं उसमें खुलूस ही होगा, अच्छाई होगी, लेकिन बहरहाल ये फंक्शनल है। वेस्टर्न थाट जो है वो कैसे देखती है आपको, तो मसलन ये कि सब कॉन्टिनेंट के हवाले से मसलन मार्क्स को लेते हैं। कार्ल मार्क्स जो है आपको पता है इंटीरियर सिंध में बड़ा पढ़ा जाने वाला थिंकर है और उसको उसकी एक रेपुटेशन है और उसके बारे में आमतौर पे ये भी ख्याल है कि मार्क्स जो है वो एक इनकलाबी भी है और मार्क्स जो है वो पिसे हुए तबकों का, कुचले हुए तबकों का की आज़ादी का मतवाला है। वो चाहता है कि इनको आज़ादी मिले, जो वो तबके जिनका इस्तेसाल होता है, यानी ये इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ बगावत करने के जो बड़े थिंकर्स हैं मगरबी तारीख के अंदर, उनमें से एक आदमी है मार्क्स। तो मैं एक ऐसा आदमी आपको उसके की पोजीशन बता रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट के हवाले से, जो अनक्वेश्चनेबली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि उस वो हमदर्द रहा है पिसे हुए एक्सप्लॉयटेड तबकों का। तो जाहिर है कि अगर आप 200 साल तक कोई कौम एक्सप्लॉयट हो रही हो तो जाहिर है कि मार्क्स की हमदर्दियाँ उसके साथ होंगी। तो मार्क्स के अल्फाज आपको बता रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट के बारे में। मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल जब पब्लिश हुआ तो उसने ये कहा कि ये बेहतर है कि बर्रे सगीर जो है वो अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन गया, ये बेहतर हुआ। सही है, ये मार्क्स के अपने अल्फाज हैं। ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो मार्क्सिस्ट हैं वो पेश नहीं करते, लेकिन ये मार्क्स का अपना ख्याल है और मेरे पास का रेफरेंस भी मौजूद है, जो जो भाई चाहेगा उसको मिल जाएगी किताब। मार्क्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो उसने अखबार में लिखे और वो फिर महफूज करके उन्होंने एक साथ करके छाप दिए थे। तो उसने सब कॉन्टिनेंट के हवाले से जो आर्टिकल लिखे वो सब जमा है उसने। उसमें उसने मार्क्स ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने का तसल्लुत हो गया। तो जो लोग मार्क्स को जानते थे उनका ये भी ख्याल था कि मार्क्स तो एक इनकलाबी है और मार्क्स तो इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ है और अंग्रेज इस्तेमार एक इस्तेसाली निज़ाम है और वो सरमायादार भी है और वो एक्सप्लॉइट भी कर रहा है और हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये इसने ये क्यों कहा, तो गलत बात है, उसे कॉलोनाइजेशन के खिलाफ होना चाहिए था। तो उसका फिर मार्क्स ने मजीद जवाब दिया कि क्यों वो ऐसा कहता है। मार्क्स ही कहता है कि देखो भाई, मसला ये है कि हिंदुस्तान में किस किस्म की कौमें आबाद हैं। चूंकि मार्क्स बुनियादी तौर पर एक फलसफी भी है, सोशियोलॉजिस्ट भी है और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में भी उसकी एक नज़र है, वो ये कहता है कि देखो हिंदुस्तान पे जो कौमें आबाद हैं वो उन कौमों को मार्क्स कहता है दीज आर वेजिटेरियन नेशंस। वेजिटेरियन नेशंस, वेजिटेरियन नेशंस का क्या मतलब है, ऐसी नेशंस जो सब्जी खोर कौमें। और जब वो कहता है हिंदुस्तान की कौमें तो उसका मतलब ज्यादातर जाहिर है कि मेजॉरिटी हिंदुओं की है और हिंदू आमतौर पर वेजिटेरियन होते थे, इसीलिए जब वो कहता है हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट तो प्रीडोमिनेंटली उसके ख्याल में हिंदू आबादी या अक्सरियत। तो उसने कहा भाई ये जो कौमें हैं ये घास फूस खाने वाली कौमें हैं, घास फूस खाने वाली कौमें होने की वजह से ये डरपोक कौमें, ये लड़ने भिड़ने वाली कौमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी तारीख ही नहीं है कि ये अपने से बाहर निकल के इन्होंने कुछ किया हो, ये हमेशा अपने इलाकों में ही रहने वाली कौमें हैं और बाहर से इनके ऊपर हमला किया जा सकता है लेकिन ये निकलकर कहीं बाहर नहीं जाते। तो ये एक आम तौर पर पीसफुल और वेजिटेरियन कौमें हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के लोग बाहर निकलकर किसी दूसरी कौम के लिए कोई चैलेंज तो पोज नहीं करेंगे और इनका क्या काम है, घास फूस खाना और ऐसे ही मजे करना, मुतमईन रहना, जिस तरह होता है ना अपना भेड़ बकरियां होती हैं वो चारा खा रहे होते हैं, बराबर में उसको दूसरे को उठा के वहीं पे छुरी फेर रहे वो खाना खा रहा है, देखा है आपने बकरीद में, वो खा रहा होता है, दूसरे उसके भाई को उठा के वहीं पे काट रहे होते हैं वो चारा खा रहा होता है। इस तरह वो मार्क्स समझता है सब कॉन्टिनेंट की कौमों के बारे में। वो कहता है कि सब ये जो सब कॉन्टिनेंट की कौमें हैं ये बाहर निकलकर हमले नहीं करती, जंगजू कौमें नहीं है, महज़ब कौमें हैं, पढ़ी लिखी हैं लेकिन ये वेजिटेरियन है, नॉन एग्रेसिव, इनकलाबी कौमें नहीं है। दूसरा वो ये कहता है कि चूंकि ये अपने इलाकों से बाहर नहीं निकलते तो ये नहीं होगा कि इनको कोई दूसरा छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कहीं नहीं जाएंगे तो कोई और आपके, फर्ज के आप गए मैं किसी के घर नहीं जाता कोई मेरे घर ना आए, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई आपके घर में जरूर घुस जाएगा। तो उसने कहा कि अगर ये बाहर नहीं निकलते तो ऐसा नहीं होगा कि इनको लोग छोड़ देंगे बल्कि इनके ऊपर कोई ना कोई कब्जा जरूर करेगा। अब इनको 18वीं सदी यानी कि 18वीं सदी में हिंदुस्तान में अगर मरकज कमज़ोर हो गया है, बादशाह यानी कि औरंगज़ेब जैसा ज़बरदस्त बादशाह था वो ज़ाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी की ज़रूरत नहीं थी उसके सामने, वो गिर गया, वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कोई मरकज कमज़ोर हो गया तो बहुत सारी बगावतें, छोटी छोटी रियासतें बन गई, छोटे छोटे पॉकेट में तब्दील हो गई, सैकड़ों राजवाड़े थे हिंदुस्तान के अंदर, सैकड़ों सैकड़ों नहीं तो बल्कि अगर एग्जैजरेशन ना हो तो हज़ारों राजवाड़े मौजूद थे हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी। तो जाहिर है कि मरकज नहीं है तो इनके ऊपर कोई दूसरा बाहर से आकर जरूर अटैक करेगा। तो उसने कहा कि भाई बाहर से कौन अटैक करेगा, तो उसने कहा 18वीं सदी में इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं पठान, अफगानिस्तान से आकर इन पर कब्जा कर लें। अब ये जो पठान है ये हिंदुस्तान पे कब्जा करते हैं तो इनके सामने ये कौमें खड़ी नहीं हो पाती, वो आते हैं और पूरे के पूरे इलाकों को फतह कर लेते हैं। और ये लोग बुनियादी तौर पर कैसा माइंड रखते हैं, कबायली माइंड रखते हैं, कबायली होते हैं ये, और नोमैडिक होते हैं और शदीद किस्म के रिलीजियस हैं। यानी कि जब भी पठान ऊपर से नीचे आते थे तो सब कॉन्टिनेंट में क्या होता था, मास कन्वर्जन होती थी। ऐसा नहीं कि पठानों से डर के वो मुसलमान हो जाते थे, वो मुसलमान करना उनके लिए एक उनके ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव होता था। तो पहला खतरा ये है मार्क्स के ख्याल में कि ऊपर से पठान उतर के आ जाएं और इनको कब्जा कर ले, मरकज कोई हुकूमत नहीं है और ये आ जाएंगे और पठान कब्जा कर लेंगे पूरे हिंदुस्तान में। और अगर पठानों के हाथ में आ गया हिंदुस्तान तो वो क्या करेंगे, एक तो वो मजहबी हैं, मुसलमान भी हैं और कबायली भी हैं, लिहाजा मादी और साइंसी तरक्की का अमल और पीछे चला जाएगा। लिहाजा ये बहुत गलत होगा कि अगर पठान आकर इन पर कब्जा कर ले। अच्छा, दूसरा खतरा क्या है, दूसरा खतरा ये है कि ऑटोमन अम्पायर जो है टर्क, जाहिर है कि सल्तनत उस्मानिया मौजूद थी और ऑटोमन्स जो थे पहले रूल कर चुके हैं, यानी कि तुर्क जो है मुसलमान रूल कर चुके हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश और नासिरुद्दीन महमूद और रदिया सुल्तान, ये सब तुर्कियन नस्ल हैं, ममलूक्स थे। तो जाहिर है कि सलातीने दिल्ली तो हुकूमत कर चुके हैं हिंदुस्तान पे, उनकी हिस्ट्री भी है। लिहाजा दूसरा खतरा ये है कि ऑटोमन अम्पायर आए और हिंदुस्तान को फतह कर ले। ऑटोमन अम्पायर अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान पे फतह करेगी तो उसमें खतरा ये है कि ये ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अर्बनाइज भी हैं। लिहाजा एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि ऑटोमन अम्पायर को बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और दूसरा ये कि इनलाइटनमेंट और मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चूँकि ऑटोमन अम्पायर मजहबी हैं, वो भी मजहबी लोग हैं, लिहाजा ये तरक्की का दौर पीछे चला जाएगा। वो कहता है भाई तीसरी ऑप्शन ये है कि अंग्रेज़ आकर उन पर कब्ज़ा कर ले। अब अंग्रेज़ जो हैं पठानों और तुर्कों के मुकाबले में मॉडर्न हैं, ये कॉलोनियल पावर, लूटेंगे मारेंगे ये सब कुछ करेंगे लेकिन मॉडर्नाइज भी करेंगे। तो अंग्रेज इस्तेसाल तो करेंगे जो कि गलत है, लेकिन ये इस्तेसाल जरूरी है इन घास फूस खाने वाली कौमों के लिए। जब इनका इस्तेसाल हो जाएगा अच्छी तरह तो उसके नतीजे में एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस भी होगा और जो रिवायती ताल्लुकात हैं, रिवायती मैकेनिज्म है ऑफ प्रोडक्शन और ग्रोथ, वो तब्दील होंगे और उसके नतीजे में मॉडर्नाइज होगी सोसाइटी। और फिर जब सोसाइटी मॉडर्नाइज हो जाएगी फिर हम यहाँ पर प्रोलेटेरियट स्ट्रगल करेंगे, और जब प्रोलेटेरियट स्ट्रगल होगी तो उसके बाद हम उस इस्तेहसाली निज़ाम को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये मार्क्स की पोजिशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मगरिब का जो सबसे बड़ा डिफेंडर है किसका, मजलूमों का, जो जर्मनी से भी एग्जाइल हुआ और फ्रांस से भी एग्जाइल हुआ फिर इंग्लैंड आ गया, सारी जिंदगी भागता रहा, मजलूम तबकों का आलमबरदार है, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल उससे मुतासर हैं, वो ये कहता है कि गो के अंग्रेज़ आपको एक्सप्लॉइट करेंगे लेकिन वो आपको एनलाइटन भी करेंगे, वो आपको मॉडर्नाइज भी करेंगे, वो आपको साइंटिसाइज भी करेंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम प्रोलेटेरियट या पोलतारी जो जिद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि दुनिया में वो इस्तेसाली निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस्तेसाली निज़ाम को ख़त्म करने का पहला तरीका ये है कि पहले इस्तेसाल करो, जब इस्तेसाल अपनी हद पे पहुंच जाए तो फिर اس کے خلاف بغاوت ہوگی. یعنی کہ انقلابی شخصیت پیدا کرنے کے لیے استحصال ضروری ہے. یہ مارکس کے فلسفے کا بنیادی نقطہ ہے, فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے مارکسسٹ تھیوری کا. یعنی کہ مارکس ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ انقلاب سب سے پہلے وہاں آئے گا جہاں پہ استحصال سب سے زیادہ ہو. سب سے زیادہ استحصال وہاں پہ ہوگا جہاں سرمایہ داری سب سے زیادہ طاقتور ہو. سرمایہ داری سب سے زیادہ طاقتور کہاں ہے؟ جرمنی میں ہے, فرانس میں ہے اور برطانیہ میں ہے. تو مارکس یہ کہتا تھا کہ جب یہاں پر استحصال اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا تو یہاں پر انقلابی طبقہ پیدا ہو جائے گا. یعنی یہ کلاس ان اٹ سیلف سے کلاس فار اٹ سیلف میں لوگ تبدیل ہو جائیں گے. کلاس ان اٹ سیلف اور کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک طبقہ ہے انسانوں کا جو بنیادی طور پر انقلاب برپا کر سکتا ہے, تو وہ فی نفس ہی ایک انقلابی طبقہ ہے. لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں انقلابی ہوں. تو اس وقت جس اسٹیٹ آف کانشسنس میں وہ ہے وہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ کلاس ان اٹ سیلف. یعنی کہ وہ ایک انقلابی جماعت تو ہے, ایک انقلابی کلاس تو ہے, لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ میں انقلابی ہوں یا نہیں ہوں. تو پہلے کیا ہوگا؟ انقلابی شخصیت کی شناخت کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ اس کا استحصال ہو. جب اس کا بہت استحصال ہو جائے گا اور استحصال اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ طبقہ کلاس ان اٹ سیلف سے کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہو جائے گا. جب وہ کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر وہ انقلاب برپا کر دے گا. تو جرمنی میں, فرانس میں اور برطانیہ میں مارکس اسی زمانے میں جب ہمیں لوٹا پیٹا جا رہا تھا کیا کوشش کر رہا تھا؟ کہ یہ طبقہ جو کہ فرانس میں, برطانیہ میں اور جرمنی میں استحصال کا شکار ہے, کون سا طبقہ؟ مزدوروں کا طبقہ. مزدوروں کا طبقہ جو استحصال کا شکار ہے وہ یہ پہچان لے کہ میں انقلابی ہوں. تو اس دور میں جب جرمنی کے اندر لوگ نہیں پہچان پا رہے کہ وہ انقلابی ہیں یا نہیں ہیں, ہندوستان کے مریل ٹٹو ٹائپ کے لوگ کیسے پہچانیں گے کہ وہ انقلابی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آرگیومنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب آپ کسی نظریے کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سچائی نہیں ہے, یہ سچائی کے بارے میں ایک نظریہ ہے, یہ حرف آخر نہیں ہے. مارکس جو سمجھتا تھا اس نے بیان کر دیا. مارکس نے کہا آپ کے حق میں یہ بہتر ہے کہ آپ پٹھانوں کے ہتھے چڑھنے سے یا ترکوں کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ انگریزوں کے ہتھے چڑھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پہ کریں گے جو استحصال, اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو کریں گے ماڈرنائز, اور اس ماڈرنائزیشن کے نتیجے میں آپ استحصال تو ہوگا لیکن استحصال کے نتیجے میں آپ کلاس ان اٹ سیلف سے کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہو جائیں گے, پھر آپ انشاءاللہ انقلاب برپا کر دیں گے, پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آگئی بات؟ کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو, کیونکہ یہ ابھی سیدھی بات ہے. اب میں اس کو کمپلیکس کروں گا. سمجھ میں نہیں آئی آپ؟ جی فرمائیں. ہاں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مارکس کا نظریہ یہ تھا کہ انقلابی ہونے کے لیے استحصال ضروری ہے, ماڈرن ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے, ماڈرن ہونا ضروری ہے. بالکل مارکس ایسا ہی سمجھتا تھا. مارکس کہتا تھا کہ ماڈرنائزیشن کے بغیر اس سطح کی ترقی ممکن نہیں ہے جو اشتراکیت کو پیدا کرے. اشتراکیت کو پیدا کرنے کے لیے جس قسم کی ترقی درکار ہے وہ ماڈرنائزیشن کے بغیر نہیں ہے. سمجھ
समझ आ गई बात?
अच्छा, अभी मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। मैंने ये वजह, ये तमयीद जो है वो मार्क्स से क्यों बांधी? मार्क्स से इसलिए बांधी कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो पाकिस्तान से बाहर कभी जाते हैं, अभी तक पाकिस्तान से बाहर जब वो जाते हैं तो जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है वो उनकी मादी तरक्की ही है। ठीक है, मादी तरक्की उनको, उनके होश उड़ा देती है। होश उड़ना जिसे कहते हैं ना, होश उड़ जाते हैं। अच्छा, ये होश उड़ने का जो अमल है ये शुरू आज से नहीं हुआ भाई, ये अंग्रेजों की आमद के बाद से शुरू हुआ। अंग्रेजों ने जो ट्रेन बनाई और ट्रेन की पटरियां बिछाई उससे हमारे यहाँ लोग बहुत इंस्पायर होते थे। द आयरन स्नेक, द आयरन स्नेक, यानी कि अगर आप होरोरियो ओजामा, ये अफ्रीकन राइटर है, तो अगर आप अफ्रीकन्स को पढ़ें तो वो अंग्रेज़ों और फ्रेंच के ये जो रेलवे ट्रैक्स थे उनसे बहुत इंस्पायर होते थे कि यार क्या चीज़ है ये दौड़ती है इधर उधर। तो जो रेलवे ट्रैक्स अंग्रेज़ों ने बनाए थे वो क्यों बनाए थे उन्होंने, आपके ख्याल में क्यों बनाए थे? अंग्रेज़ों ने रेलवे ट्रैक्स क्यों बिछाए थे पूरे हिंदुस्तान में? तिजारत के लिए। किससे तिजारत करते? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में माल पहुँचे, पूरे हिंदुस्तान से माल जाए भी। लूटने के लिए था वो, लूट का माल समंदर पार ले जाने के लिए बना था। जंगे प्लासी के बाद, जब आप जंगे प्लासी हारे हैं तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन कहता है, आफ्टर देयर डिफीट द रिवर ऑफ गोल्ड वर फ्लोइंग टूवर्ड्स मॉन्चेस्टर, सोने के दरिया जो है वो बहते थे मॉन्चेस्टर की तरफ। जो जंगे आप हारे हैं बगैर लड़े गद्दारियां कर करके, उसके नतीजे में सोने के दरिया जो है वो बहते थे। तो ज़ाहिर है सोने का दरिया दूर दराज से, तो उनको पहुंचाने का इंतज़ाम जो था वो रेलवे ट्रैक से था। रेलवे ट्रैक्स जो कौमें ज़्यादा जल्दी पहुंचा लेती थी वहाँ का माल लूट मार करके पहुंचा दिया जाता था समंदर पार, और वहाँ से कुछ जो ट्रैश होता था वो यहाँ लाके बेच दिया जाता था। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ कह देते हैं ट्रेड, ट्रेड जैसे यहाँ से उन्होंने इसलिए बनाया था कि आप लोग यहाँ पर अपनी दुकानें खोलो और हाँ, और वो फिर आपसे आके ख़रीदें, अंग्रेज़ आपको डॉलर दे, फिर आप, ऐसा कुछ नहीं था भाई। लूट मार का माल, लगान का माल सारा उठाकर यूरोप ले जाने के लिए बने थे वो ट्रैक। तो ये मिसयूज ऑफ द टर्म है कि ट्रेड के लिए बना था, लूट मार प्लंडरिंग के लिए बना था। द वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग फॉर्म ऑफ प्लंडरिंग एवर एवर कंसीव्ड बाय सब कॉन्टिनेंट दैट हैज बीन डन बाय द ब्रिटिशर्स। देखें, तुर्कों ने हुकूमत की है, पठानों ने भी हुकूमत की है और मुगलों ने भी हुकूमत की है, लेकिन ये थोड़ी करते थे कि वो, उन्होंने पाया तख्त उनका कहीं और होता था, यहां आते थे लूट मार करते थे लेके चले जाते थे, ऐसा नहीं, वो यहीं रहते थे, बादशाह यहीं रहता था। जैसे मुगल्स जब आए तो मुगल्स के बारे में अंग्रेज हिस्टोरियन ही लिखता है, दे स्टार्ट लाइक ग्लैडिएटर बट दे एंड्स लाइक ज्वेलर्स। जब हिंदुस्तान आए तो मुगल्स जब आए तो वो ग्लैडिएटर्स की तरह आए कि उनकी ताकत से वो डरते थे हिंदुस्तानी। लेकिन जो आखिरी उनका बादशाह था वो तो शायर था, और जिस जबान में वो शायरी करता था वो सब कॉन्टिनेंट की जबान थी, सब कॉन्टिनेंट की जबान में शायरी करता था। तो इसका मतलब है ऐसा थोड़ी करता था कि उसने रेलवे ट्रैक्स बना दिए थे, सबको लूट के ले जाके जो है मावराउन नहर के अंदर उसने स्काई स्कैपर्स खड़े कर दिए थे। वो जो कुछ भी करते थे लूट मार जो कुछ भी कर, वो यहीं रहते थे, तो वो यहीं की इकोनॉमी में रोल होता था। ऐसा थोड़ी होता था कि पूरा लूट के बाहर ले गए। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो गांधी जो था वो जा रहा था हिंदुस्तान से, तो गांधी ने लंगोट बांधी हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई वहां पे सर्दी बहुत होती है तो आप कपड़े तो पूरे पहन लो, यहाँ तो हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं वहां तो आप पकड़ जाओगे। तो उसने गांधी ने कहा आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट इंडिया इन इट्स ट्रू कलर, मैं अंग्रेजों को हिंदुस्तान का वो चेहरा पेश करूंगा जो लूट मार के बाद उन्होंने हमारे जिस्म पे छोड़ा है। उन्होंने हमें लूट लूट के हमारे जिस पे लंगोटी ही छोड़ी है और कुछ नहीं छोड़ा, तो मैं क्यों जाकर वो चेहरा दिखाऊं जो हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान का ये हशर इन लोगों ने ही किया। तो पहली बात तो ये कि इसके बारे में जो एक थिंकर है, जो बड़ा थिंकर है, मैंने और भी बहुत सारे मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मार्क्स जो जिसको हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग आइडियलाइज करते हैं, सही है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मैं डोंट वॉन्ट टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल कि मैं उनके नाम लूँ, बड़े बड़े लोग मार्क्स को जो है वैल्यू करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ भाई मार्क्स का आपके बारे में ये तसव्वुर था। और ये हवाई खलाई बात नहीं है, लिखा हुआ है उसने, वो कहता है आपके हक में ये बेहतर है कि अंग्रेजों के जूते खाकर मॉडर्नाइज हो, जब मॉडर्नाइज हो गए फिर आपको समझ में आएगा दुनिया क्या है, फिर आप कुछ करना अपने बारे में, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आज जो तर्ज जिंदगी आपने इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में इख्तियार कर रखी है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है आपका, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है आपका, अंग्रेजों से आने से पहले क्या वो वजूद रखता था या नहीं, यस और नो है भाई? नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्वेश्चन ये कर रहा था, आज जो निज़ाम इन प्रैक्टिस है, जो सियासी निज़ाम, जो माशी निज़ाम और जो माशरती निज़ाम और जो कम्युनिकेशन का निज़ाम मौजूद है, जो निज़ाम आज मौजूद है, क्या वो अंग्रेज़ों के आने से पहले वैसा निज़ाम मौजूद था या कोई दूसरा निज़ाम होगा? आज जो निज़ाम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो अंग्रेज़ों के आने से पहले था या नहीं था? कोई भाई ये तो नहीं समझ रहा कि नहीं ऐसा था लेकिन वो बाद में हमने डेवलप किया। मसलन आप मसलन कैसा मसलन क्या था? लूट मार वगैरह? नहीं नहीं, मैं ये तीन चीज़ों को फोकस करें, सियासी निज़ाम, क्या कहते हैं कम्युनिकेशन का निज़ाम और माशी निज़ाम। माशी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर जो आज इन प्रैक्टिस है, क्या वो अपनी किसी भी प्रिमिटिव फॉर्म में अंग्रेज़ों के आने से पहले मौजूद था या नहीं था? तो हम ये कहते हैं कि नहीं था मौजूद। यानी कि आज जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर मौजूद है, आपने उसे कब और कैसे इख्तियार किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है قوموں کی تاریخ کے اندر, قوموں کی تاریخ کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کیسے وجود میں آیا, کن حالات نے وجود میں آیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا. دنیا میں انسٹیٹیوشنز, کسی بھی قسم کے انسٹیٹیوشن کے جڑ پکڑنے کے دو پاسبل طریقے, کئی پاسبل طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم بائنری اپوزیشن میں دیکھیں تو دو طریقے ہیں. ایک تھیوری سے انسٹیٹیوشن کا پیدا ہونا, یعنی کہ پہلے نظریات آ گئے اور نظریات کے بعد ادارے وجود میں آ گئے, ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اس کا اپوزٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے, پہلے انسٹیٹیوشن آ گئے اس کے بعد تھیوری جنریٹ ہوئی. تو دونوں پاسبلٹیز رہتی ہیں. دنیا میں یہ دونوں طریقے اختیار ہوئے کہ کہیں پر ایسا ہوا کہ نظریات پیدا ہوئے, نظریات پنپے, نظریات نے اپنی جگہ بنانی شروع کی, اور ان کے نتیجے میں جیسے جیسے نظریات غالب آتے چلے گئے ویسے ویسے ان نظریات کو پریکٹس کرنے کے انسٹیٹیوشن وجود میں آتے چلے گئے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ انسٹیٹیوشن جڑ پکڑتے چلے گئے, اور پھر نظریے اور ادارے کے باہمی تعلق کے تحت پوری کی پوری جو لوگوں کی جو واضح اکثریت ہے وہ اس نظام کا حصہ بن گئی. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نظریات جڑ پکڑ جائیں کہیں پر, اور نظریات کے جڑ پکڑ جانے کے بعد ادارے وجود میں آئیں, اور پھر اداروں اور نظریات کے باہمی تعلق کے نتیجے میں لوگوں کے یا مستقبل کی جنریشن کے ذہن تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جس کی نظریاتی اساس کچھ اور ہو انسٹیٹیوشن مسلط کر دیے جائیں. انسٹیٹیوشن جو روایتی طور پر اس قوم کے نظریات سے ہم آہنگ ہو ان سب کو تباہ کر دیا جائے, اور ان کے علی رغم کوئی دوسرا انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ پیدا کر دیا جائے, اور لوگوں کے پاس یہ آپشن نہ ہو کہ وہ کسی دوسری انسٹیٹیوشنل فارمیشن میں جا سکیں, اور پھر ان انسٹیٹیوشن کی نظریاتی جسٹیفیکیشن مختلف ذرائع سے پیدا کی جائے. انسٹیٹیوشن پہلے پریکٹس ہو رہے ہیں, نظریاتی جواز بعد میں فراہم کیا جائے, اور پھر ایک وقت آئے کہ اس حد تک نظریات پھیلا دیے جائیں کہ لوگوں کو وہ ادارے نیچرل لگنے لگے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو آپ کے خیال میں ہندوستان کے اندر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کیا بھائی کوئی اس بات سے اگر ڈس ایگری کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. اب جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ریزن دیں ہم سب کے سامنے کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں, ایسا کیوں سمجھتے ہیں. جو اس پہ بات کرنا چاہے تفصیل سے کریں. یہ کام کر رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, جو بھی بھائی اس پہ بات کرنا چاہے گا. اور اٹس این اوپن فورم, سب جو بھائی جن کے ذہن میں جو ہے وہ بات کرے.
جو
तो उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर का जो मामला है वो
यहाँ पर सिर्फ मैं ये जो मैंने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल सही बात है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के पर्सपेक्टिव में मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, हिंदुस्तानियों के या बर्रे सगीर पाको हिंद के पर्सपेक्टिव में मैं ये पूछ रहा हूँ कि बर्रे सगीर पाको हिंद के तनाजुर में हम ये पूछ रहे हैं कि क्या बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर ये इदारे वजूद में पहले आए या नज़रियात पहले आए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो कि प्रैक्टिस हुए, क्या सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे उन्होंने क्या पहले नज़रियाती तौर पर उसको जांच और परख लिया था, उसके बाद अंग्रेज़ों को ये इजाज़त दी कि आप ये करें, या वो तो बेचारे ज़ाहिर है कि इस काबिल ही नहीं थे। 1857 के बाद तकरीबन 70,000 जो उलमा थे उनको फांसी दी गई, और जो जो जंगे आज़ादी में पेश थे जो तबकात उनके बड़े जो लीडरशिप थी वो तो मारी गई। उसके नतीजे में ये समझना कि उन्होंने किसी नज़रियाती तज्जिए के बाद अंग्रेज़ को ये इजाज़त दी कि वो करें, या ये कि वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो कोई रेजिस्टेंस देते, वो तो एक ज़बरदस्त कस्म की शिकस्त से दो चार थे, उस शिकस्त को ओवरकम करने की भी उन्होंने कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम हो गई। लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सब कॉन्टिनेंट पीपल।
मैं इससे ले सकता?
जी जी बिल्कुल।
स्टेज पे बैठना पड़ रहा है ताकि इस्लामाबाद वाले के वाले से मेरा अपना ख्याल है कि किसी भी कौम की जो अकदार होती हैं, रवायात होती हैं, वो गैर महसूस तरीके से वो डेवलप होती हैं, उसके बाद वो वहाँ पर इदारे वजूद में आते हैं। हमारी जो कदर है मतलब दौलत के हवाले से, दुनिया के हवाले से, हुब्बे दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत की फिक्र है। तो यहाँ पर बैंकिंग वैंकिंग का क्या होता है, सिलसिला बन ही नहीं सकता था यहाँ पर। लेकिन मगरब से जो इदारा आया बैंक की शक्ल में, या जो पूरा माशी सेटअप आया, उसकी अपनी एक कदर है। वो वहाँ पर चूंकि उनका तस्वुर और उनका जो अपना एक नज़रिया है, उस नज़रिए की बुनियाद पर बैंकिंग का पूरा डिस्कोर्स है वहाँ पे। लेकिन हमारे पास उसका सिलसिला नहीं रहता। मेरा अपना ख्याल है कि हमारे पर ये इदारे थोपे गए, और न सिर्फ इदारे थोपे गए बल्कि एक सबसे बड़ा इजहार का जो जरिया है ज़मानी तब्दील कर दी गई अपनी ज़बरदस्त, जिसमें मुसलमानों ने एहतजाज भी किया।
अंग्रेज़ों ने जो आप पे निज़ाम थोपा था उसको शुरू में मनोअन कबूल नहीं किया मुसलमानों ने। मसलन ये कि अगर तालीमी इदारों के हवाले से लें तो 4 तजर्बात मुसलमानों ने किए। ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बंजर थे। देखिए, एक तजर्बा अलीगढ़ का है आपके सामने, और वो ये है कि वेस्टर्न एजुकेशन के ज़रिए मुसलमानों के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश की जाए। सही है, ये अलीगढ़ का तजर्बा था। दूसरा जो तजर्बा था वो ये था देवबंद का, कि भाई हम अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे, हम मदारिस बनाएंगे और मदारिस के अंदर बैठकर इस्लामी इल्मियत का तहफ़ कर लेंगे, ये करेंगे हम। हम लड़ नहीं सकते लेकिन हम इस्लामी इल्मियत को अंग्रेज़ों के हवाले नहीं करेंगे बल्कि उसका तहफ़ करेंगे देवबंद की सूरत में। तो देवबंद दूसरा एपिस्टेमोलॉजिकल रिस्पॉन्स था। इनको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोप दिया और वो होता चला गया। तीसरा तजर्बा आपने किया नदवतुल उलमा का, नदवा का जो एक्सपीरियंस था वो था हाफ अलीगढ़ एंड हाफ देवबंद, आधा देवबंद के भाई ऑर्थोडॉक्स इस्लामी तालीमात और दूसरा अलीगढ़ की वेस्टर्न एजुकेशन भी थोड़ी बहुत, यू नो, ये तीसरा तजर्बा था। चौथा तजर्बा था उस्मानिया का, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ये तजर्बा था कि देखें इल्म सबकी मीरास है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि वो गैर की ज़बान में है, तो उसको सबको तर्जुमा कर लो उर्दू में, उर्दू में तर्जुमा कर लो उसका। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उसने तकरीबन 700 डिफरेंट तर्जुमा करने वाले लोग अपॉइंट किए बादशाह ने, बादशाह काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था, सात ज़बानें खुद जानता था वो, तो बादशाह ने ये फैसला किया कि भाई तर्जुमा होना चाहिए दुनिया में हर अच्छी किताब का उर्दू में, और फिर उर्दू में पढ़ाया जाना चाहिए, सब चीज़ उर्दू में, मेडिसिन भी उर्दू में और इंजीनियरिंग भी उर्दू में और जियोग्राफी भी उर्दू में और मैथमेटिक्स सब उर्दू में। ये चार तजर्बात हमने किए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया और जो अंग्रेज़ों के दिल में आता रहा वो करते रहे और हमारे बड़े लोग सब बेकार लोग थे, उन्होंने ये चार कोशिशें की। हम ये देखेंगे कि उन चार कोशिशों में सबसे कामयाब कौन सी हुई, और कामयाबी से हमारी मुराद ये है कि जो फैल गई, ज़्यादा डोमिनेट कर गई, और वो डोमिनेट क्यों की, यानी कि अगले जो हमारे सेशन होंगे हम इसी सवाल को देखने की कोशिश करते रहेंगे। और कोई जी जी, और कोई उसको पढ़ दे ना, पढ़ दे, पढ़ दे, सब लोग सुन भी लो।
सलाम जो बात कह रहे हैं ये कि वो तो आज भी है, अगर हमारी हुकूमत को कोई फैसला करना हो तो आज भी ब्रिटिश की मंजूरी या इजाजत ही से होता है,
जो भी नजरिया पास करना है ब्रिटिश अमेरिका।
नहीं देखें, ये हो सकता है, ये भी एक थियरी है कि इम्पीरियलिज्म अभी भी है, जिसे हम कहते हैं नियो इम्पीरियलिज्म, लेकिन इस इम्पीरियलिज्म की बुनियादी कमज़ोरी है कि ये डिस्टेंट इम्पीरियलिज्म है, फासले से, तो जाहिर है कि जो चीज़ वो कहते हैं वो सब नहीं मानते, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, हर बात नहीं मानते, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, कुछ में उनके मदद के ख्वाहां भी होते हैं, और उस इस्तेसाल से ही ये इस्तेसाल का कोई कंपैरिजन नहीं है, जो अंग्रेज़ों का इस्तेसाल था उससे ये इस्तेसाल का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये कि अगर आप अभी नो कह दें तो बहुत कुछ आप तब्दील कर सकते हैं, बहुत कुछ, लेकिन सवाल ये कि आप क्यों करना चाहेंगे इस मिनट में। ठीक है, मैं मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी लोगों की बात हो गई और ये अग्रीड ही है, अग्रीड पॉइंट है कि ठीक है कि, तो इसमें मैं एक पॉइंट और रेस कर देता हूँ फिर हम ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, तो हम लोगों ने ये देखा है कि इस बात पे एक ख़ास किस्म का कंसेंसस हमारे यहाँ इन द फ्लोर मौजूद है कि हम लोगों ने जो इदारे प्रैक्टिस किए या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमने बाय चॉइस नहीं बाय डिफैक्टो प्रैक्टिसेस इख्तियार किए। यानी कि ग्राउंड रियलिटी यही थी कि भाई ये ऑप्शन है आपके पास, इस ऑप्शन पे आप चलेंगे तो आप आपकी फलाह है, अगर नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब एक आखिरी पॉइंट पहले मैं डिस्कस कर दूं, वो जो हमारी साइकी से जिसका ताल्लुक है वो ये कि ऐसा क्या ये बात है कि अंग्रेज जब यहाँ पे आ गए तो अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देने की हमने कोई अस्करी जिद्दोजहद नहीं की। तो अगर जाहिर है कि आपने सब कॉन्टिनेंट की तारीख पढ़ी हो तो आपने ये देखा होगा और आपको ये पता होगा कि बहुत ज़्यादा कोशिशें मुसलमानों ने की लेकिन वो सब की सब नाकाम हुई। यानी कि प्लासी की जंग आप हार गए, 1857 की जंग आप हार गए, आप रोहिलखंड में आपको शिकस्त हो गई, टीपू सरंगापट्टनम आपके हाथ से निकल गया, टीपू की शहादत हुई और अपना शाह वली उल्लाह का जो खानवादा था उसमें जब कोशिश की तो उसमें जो है सैयद बादशाह या सैयद इस्माइल शहीद हुए, तीतू मीर शहीद हुए। यानी कि जो आपने कोशिश की नाकाम हुई। यानी कि आपने एक तब्दीली बुलेट के प्लेन पे लेने की कोशिश की बट इट वॉज फेल्ड। क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं लेकिन फैक्ट ये है कि आपको शिकस्त हुई। 1857 में भी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर एक आम ख्याल ये था कि जब जंग होगी तो हाजी तरंगजई जो है अफगानिस्तान से आ जाएंगे, हाजी तरंगजई जब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी हो जाएगी। हाजी तरंगजई तशरीफ नहीं लाए लिहाजा हमें शिकस्त हो गई, हाजी तरंगजई का हम लोग इंतजार ही करते रह गए। एक फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि अंग्रेजों के जब यहाँ पर आए हैं तो मुसलमानों के बाज इलाके, ख़ास तौर पे मुसलमानों के वो इलाके जो प्रीडोमिनेंटली मुसलमानों के इलाके थे लेकिन सिखों के काबू में आ गए थे। मुग़लों की शिकस्त के बाद मुसलमानों के वो इलाके जो सिखों के काबू में आए, सिखों ने बदतरीन बर्बरियत की मुसलमानों पर। तो मुसलमानों पे जो जुल्म सिखों ने किया उस जुल्म को देखते हुए जब अंग्रेज आए उन मुसलमानों के इलाकों में तो मुसलमानों ने अंग्रेजों को अपना निजात दहिंदा समझा। उन्होंने ये समझा कि ये अंग्रेज हैं कम से कम सिखों से बेहतर है। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ऐसा समझे होंगे वो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो रिलेटिवली ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थे, अगर वो जुल्म करते भी थे तो इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर करते थे, कंट्रोल्ड करते थे, बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में करते थे और डिवाइड करके करते थे। तो मुसलमानों के बहुत सारे इलाके, ख़ास तौर पे वो इलाके जो सिखों के काबू में थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने वाली जिद्दोजहद में मोबिलाइज नहीं हुए। क्यों मोबिलाइज नहीं हुए? इसलिए मोबिलाइज नहीं हुए कि उनको ये यकीन ही नहीं था कि अगर अंग्रेज चले भी गए तो फिर हमारे ऊपर सिख आके बैठ जाएंगे, मरहट्टे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। लिहाजा उन्होंने ये मुनासिब समझा कि भाई अंग्रेज़ ही बेहतर है, इन बदमाशों से ये बदमाश कम बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा नहीं हो सका हिंदुस्तान तो इनका भी ना हो, लिटरली ऐसा समझते थे। मैं आपको बता सकता हूँ लिखी हुई जगह जहाँ पर लोगों ने ये कन्विंस किया अपने लोगों को कि भाई तुम अंग्रेजों से लड़ रहे हो, अंग्रेज चले गए तो तुम्हारा क्या होगा। ये रिवील करता है एक मखसूस किस्म की साइकी को कि कोई और हमारी मदद को आ जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। कोई और हमारी मदद को आ जाए, कोई बाहर से आ जाए। जैसे आपने अमेरिका के बहरी बेड़े का इंतजार करते रहे, कौन सा बहरी बेड़ा था है, सातवां बहरी बेड़ा, हालांकि उनके छह ही बहरी बेड़े थे, सातवां था ही नहीं, सातवां वो बना रहे थे, अब बन के तैयार हुआ है। जो सीरिया के बॉर्डर के साथ उन्होंने खड़ा किया है ना, वो बन रहा था उस वक्त, तो उन्होंने बहरी बेड़े का इंतजार करते रह गए, हाथ पे हाथ रख के बैठे और हाथ से निकल गया, इतनी बड़ी रियासत। ये आज से नहीं है ये काम, सदियों से, यानी के मराठे आ गए और मार रहे हैं आपको, तो आप भी थोड़ी तादाद में थोड़ी थे, आप करोड़ों में थे, लेकिन आप जो है वो शाह वलीउल्लाह को खत लिखना पड़ा, अहमद शाह अब्दाली को। ये अहमद शाह अब्दाली का मसला थोड़ी था, ये अहमद शाह अब्दाली तो वहां बैठा हुआ था। अहमद शाह अब्दाली को सैयद साहब ने कहा कि भाई आओ, और ये मराठे बहुत मार रहे हैं। उसने कहा जैसा आपका हुक्म है मैं आ जाता हूं। वो आया और उनको मराठों की पावर क्रश करके फिर वापस चला गया। तो बताने का मतलब ये कि हमारा जो रवैया रहा वो ये रहा कि मास मोबिलाइजेशन की तारीख नहीं रही हिंदुस्तान ने कभी भी, मास मोबिलाइजेशन नहीं की। अच्छा, जो हिंदुस्तान की अपनी कौमें थी, मसलन हिंदू, इनके अंदर भी मास मोबिलाइजेशन, जैसे बाहर से अगर कोई आ रहा है तो हिंदू मास मोबिलाइजेशन करते थे, जैसे महमूद गजनवी के खिलाफ मास मोबिलाइजेशन हुई, लेकिन वो मास मोबिलाइजेशन इनइफेक्टिव होती थी। वो मास मोबिलाइजेशन किसी मंदिर के इर्द गिर्द वो करता था कि भाई ये मंदिर पे खुदा का वो है और मदद है या भगवान की मदद है, लिहाजा इसके इर्द गिर्द जो मूवमेंट होगी उसको, वो बाहर से आता था, मारता था, मंदिर भी तोड़ देता था और सब कुछ लेके चला भी जाता था। तो मास मोबिलाइजेशन की तारीख ना तो हिंदुस्तानियों के अंदर मौजूद थी और ना मुसलमानों के अंदर थी। मुसलमानों के अंदर भी कोशिश यही थी कि भाई कोई बाहर से आके हमारा मसला हल कर दे। लिहाजा आपने बुलेट के नाम पर जो कामयाबियां हासिल करने की कोशिश की वो हमेशा नाकाम हुई। मास मोबिलाइजेशन जो कामयाब हुई हिंदुस्तान के अंदर, वो कामयाब हुई थ्रू बैलेट, यानी के आपने किसी ना किसी तरह मुसलमानों के नाम पर एक स्ट्रगल की, और स्ट्रगल करने के बाद आपने एक आजाद मुल्क कम से कम हासिल कर लिया। उसके साथ हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, सही किया, गलत किया, लेकिन जब भी आप हिंदुस्तान की तारीख लिखेंगे और स्ट्रगल्स की तारीख लिखेंगे तो आप कहेंगे कौन सी स्ट्रगल इवेंचुअली कामयाब हुई। ठीक है, तो उसमें सैयद बादशाह की स्ट्रगल कामयाब हुई, या रेशमी रुमाल तहरीक कामयाब हुई, या जो है खिलाफत तहरीक कामयाब हुई, कौन सी तहरीक कामयाब हुई, तो पाकिस्तान तहरीक ही कामयाब हुई। क्यों? इसलिए कि आपने रेकग्नाइज करवा लिया अपनी पॉलिटिकल एंटिटी को थ्रू बैलेट। तो जाहिर है कि वो जो कामयाबी आपको मिली उसकी बुनियाद पर आप एक ऐसा नज़रियाती असास पैदा कर सकते हैं जो ये बताए कि देखो भाई, मगरिब ने आके आपको एक तालीम दी, मगरिब ने आके आपको एक इदारा दिया, और फिर मगरिब के उसी तालीम और उसी इदारे और उसी कानून की रोशनी में आपने जिद्दोजहद की, और फिर अंग्रेज़ों को उन्हीं की तालीम, उन्हीं के हथियार और उन्हीं के कानून की रोशनी में आज़ाद कर दी, और अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, मैन ऑफ वर्ड थे। उन्होंने कहा कि वाह माशाल्लाह, हमने ही तो आपको बताया जमहूरियत, और अब आप ही हमें बना रहे हैं जमहूरियत, तो इंशाल्लाह बिल्कुल जमहूरियत ज़िंदा रहेगी, हम जिंदा रहे ना रहे, लिहाजा वो जहाज़ों पर बैठ के वापस चले। लिहाजा جو نظریہ ہم نے قائم کیا وہ یہ نظریہ قائم کیا کہ عدل کا جو اصول ہوتا ہے, عدل کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ آفاقی ہوتے ہیں. چاہے وہ انگریز لے کر آئیں, چاہے وہ سکھ لے کر آئیں, چاہے وہ کوئی بھی لے کر آئیں, وہ عدل قائم کر دیتے ہیں. تو انگریز جو آپ کے لیے لے کر آئے تھے تحفہ, اسی تحفے سے آپ نے انگریزوں کو شکست دے کر ایک آزاد ریاست حاصل کر لی. ٹھیک ہے, اس کو آپ اگری کریں یا ڈس اگری کریں یا اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک غالب نظریاتی جواز فراہم کرتا ہے اس ادارتی سببندی کا جس کے ماتحت آج آپ پاکستان کے اندر اور ہندو ہندوستان کے اندر اپنی اپنی زندگیاں, اپنی اپنی سیاسی زندگیاں, اپنی اپنی سماجی زندگیاں, اپنی معاشی زندگیاں سنوارنے یا بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی انگریزوں کو جب ہم نے اسی کی دلیل دی تو انگریز کنوینس ہو گیا. اس نے کہا واہ, یہ بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی انگریزوں کے, کہ ہم کیا ان لوگوں کے جمہوری حقوق غصب کر رہے ہیں. انگریزوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر آپ نے بیٹھ کے ان کو سمجھایا, ارے بھائی تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تم ہم پر ظلم کر رہے ہو. پھر انگریزوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی ہم تو بڑا غلط کر رہے ہیں, تو پھر ان کو ریئلائز کر کے پھر چلے گئے. 200 سال تک وہ ریئلائز نہیں کر پا رہے تھے, پھر ہم نے ان کے لیے ناممکن بنا دیا کہ وہ ہم پہ حکومت کر سکے. وہ ادارے اتنے طاقتور ہو چکے تھے, اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انگریزوں کی سٹی گم ہو گئی کہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا دلائل پیش کر رہے ہیں, کیا سیاسی بصیرت ہے. وی ہیو ٹرینڈ دیم ویل سو وی شوڈ ایکنالج واٹ ایکچولی دے آر سینگ. تو جو بھی ایسا کہہ رہے ہیں ہمیں ماننا چاہیے, اور وہ ریئلائز کر کے انگریز چلے گئے. تو یہ نظریات کی فتح ہوئی اداروں کے نمو پانے سے. ادارے اتنے گروتھ ہو گئی اداروں کے اندر کہ انگریزوں کے لیے موقع نہیں رہا آپ کو اپنے زیر تسلط رکھنے کا, اور پھر آپ نے کامیابی حاصل کر لی. اس سے یہ پتہ چلا یا کہا گیا یا بتایا گیا کہ عدل اور انصاف کے جو اصول ہوتے ہیں ابدی ہوتے ہیں, آفاقی ہوتے ہیں, اور اس کا ادراک جو ہے انگریزوں کو پہلے نہیں تھا, پھر اوور دا ایئرز انہوں نے ریئلائز کر لیا. اور وہ لوگ سب اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ جائیں آپ, یہ 100 کروڑ لوگ جو دل میں آئے آپ اپنا کریں اپنے اپنے سیاسی بصیرت کی بنیاد پہ جو کہ ہم نے ہی آپ کو دی تھی, آپ زندگی گزاریں. یہ بھی کیا ہمارے یہاں آرگیومنٹ موجود ہے یا نہیں, یہ دلیل موجود ہے یا نہیں؟ یس اور نو؟ یس. اس سے کوئی بھائی اختلاف تو نہیں کرتا خدا نخواستہ؟
Yeah.
आप क्या समझते हो बोलो। नहीं नहीं आप जो समझते हो बोलो, आप क्या समझते हो? सवाल नहीं आप बताओ ना क्यों कर। हम लोग मसलन देखें, एक तो इसका सिंपल ये है कि अंग्रेज़ ये समझते हों, फ़र्ज़ करें कि अंग्रेज़ ये समझते हैं कि देखो भाई हमारे पास जो तहजीब है ना वो बरतर तहजीब है, जब भी इनको आज़ाद छोड़ा जाएगा तो ये बेहतर और बरतर तहजीब को ही इख्तियार करेंगे, तो इनको आज़ाद छोड़ो क्योंकि ये हमारी तहजीब बरतर है और ये हमारे जैसा बनना पसंद करेंगे। एक तो एक जस्टिफिकेशन ये। दूसरी जस्टिफिकेशन ये है कि इस प्रोसेस के ज़रिए हिंदुस्तान की अक्सरियत को अंग्रेज़ों के साथ मुखासिमाना ताल्लुक़ को ख़त्म करने में मददगार होगा कि उनके दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शन है, रूलर और बीइंग रूल्ड का जो डिफरेंस है वो ओवरकम हो जाएगा और हिंदुस्तान के लोगों को पर हुकूमत करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये दोनों जवाब हो सकते हैं। तीसरा जवाब ये हो सकता है कि अंग्रेज़ ये चाहते हों कि हम लोग अच्छे इंसान बन जाएं, ये भी एक जवाब हो सकता है, अच्छे इंसान बन जाएं, जो जैसे मार्क्स कहता था कि महज़्ज़ब हो जाएं, ये भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है? यहाँ पर एक लेना सवाल,
एक बच गया है, अंकल ने आप पढ़ लिया, आखिरी सवाल, आखिरी बात।
जी ठीक है, हम यहीं से शुरू करेंगे, फिर मैं इसको समराइज भी करूँगा।
एक बार मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा, मैं ख्याल आ रहा था
जी
इंतजार करने के लिए, क्योंकि हमारे सामने दो मिसाल है, सब सही है, देखा है या समझा है आपकी बात में। एक हमारे पास कश्मीरी वाले का हमारा मिसाल है, एक जगह इंतजार की कहते थे और एक जगह गुजर 30 साल में दो एक ताकत जा चुकी है, दूसरी ताकत पूरी तरह से लट रही है। मतलब थोड़ा सा आपकी बात को मैं हालात से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, और वहाँ पर 65 साल हो गए इंतजार हो रहा है, चाहे वो हमारे पाकिस्तानियों का इंतजार हो रहा हो, लेकिन ये अपनी बुनियाद पर। बहरहाल ये आज जो जिस मौजू पर ये वर्कशॉप हो रही है, आपको अंदाजा हो गया होगा इसकी अहमियत का, और इंशाल्लाह कल सुबह सारे आपने। एक बात जो मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगा,